कॉलेज का अगला दिन। दोपहर का समय था, क्लासेस लगभग खत्म हो चुकी थी। कॉलेज का बड़ा सा प्लेग्राउंड आज असामान्य रूप से खाली था। जहां आमतौर पर स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते, हंसते और शोर मचाते दिखते थे, आज वहां हल्की सी शांति पसरी हुई थी। प्लेग्राउंड के एक कोने में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बेंच रखी थी और उसी बेंच पर बैठा था आर्यन। उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी, वो गहराई से उसे पढ़ रहा था। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो साफ समझ सकता था कि उसकी आंखें किताब पर जरूर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। उसके माथे पर हल्की सी लकीरें थीं, जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। ओहो, आर्यन ने सिर उठाया। उसके सामने विशाल खड़ा था, हाथ जेब में डाले, चेहरे पर हमेशा वाली शरारती मुस्कान। विशाल ने चारों तरफ खाली मैदान की तरफ देखा और फिर मजाकिया अंदाज में बोला, कमाल है भाई, पूरा कॉलेज यहाँ फुटबॉल खेलता है और तू यहाँ अकेला बैठकर किताब पढ़ रहा है। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराकर किताब बंद कर दी। तो विशाल उसके पास बेंच पर बैठ गया। तो कुछ नहीं, फिर उसने सीधे आर्यन की तरफ देखा। लेकिन आजकल एक बात समझ नहीं आ रही, आर्यन ने भाव उठाई। क्या? विशाल ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, आजकल तुम्हारे और अदिति के बीच चल क्या रहा है? कुछ सेकंड के लिए हवा जैसे ठहर गई। आर्यन का चेहरा तुरंत थोड़ा सख्त हो गया। विशाल आगे बोला, मतलब सीरियसली यार? उसने हाथ फैलाते हुए कहा, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब तुम दोनों का झगड़ा ना हो। वो हंसते हुए बोला, कभी कैंटीन में, कभी क्लास में, कभी बाकिंग में। फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, क्या चल रहा है? आर्यन कुछ पल चुप रहा। उसने दूर मैदान की तरफ देखा जहां हवा में सूखे पत्ते उड़ रहे थे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, विशाल तुम जानते हो ना अदिति पहले से कितनी बदल गई है। विशाल चुपचाप उसे सुनता रहा। आर्यन ने गहरी सांस ली। जब से उसे ये पता चला है, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, कि शामली ही वो लड़की है जिससे मैं पहले प्यार करता था। विशाल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आर्यन आगे बोला, तब से वो बहुत इनसिक्योर हो गई है। उसने हल्का सा सिर झुका लिया। और अब मैं उसकी इस इनसिक्योरिटी से परेशान हो चुका हूं। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर विशाल ने धीरे से कहा, ये सब कोई और कर रहा है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। मतलब? विशाल थोड़ा आगे झुका। ये सब विक्रांत कर रहा है। आर्यन की आंखों में तुरंत चमक आई। क्या? विशाल ने सिर हिलाया। हाँ? फिर उसने कहा, अदिति को शामली के बारे में किसने बताया था? आर्यन चुप हो गया। विशाल ने खुद ही जवाब दिया, विक्रांत ने। आर्यन का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता जा रहा था। विशाल बोला, और वो भी ऐसे नहीं बताया, उसने हाथ से इशारा किया, उसने पूरा मसाला लगाकर बताया। आर्यन की आंखें अब गुस्से से भरने लगी थीं। विशाल ने कहा, उसने अदिति को यही समझाया कि तुम अभी भी शामली से प्यार करते हो। आर्यन ने तुरंत कहा, ये बकवास है। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। विशाल ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, लेकिन अदिति को नहीं पता। कुछ पल तक आर्यन कुछ नहीं बोला। फिर उसने दांत भींचते हुए कहा, विक्रांत आखिर चाहता क्या है? विशाल ने धीमे से हंस दिया, तुम सच में नहीं समझ रहे। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। विशाल ने सीधे कहा, वो अदिति को तुमसे दूर करना चाहता है, और शायद, वो थोड़ी देर रुका, खुद उसके करीब आना चाहता है। कॉलेज का वही दोपहर का समय। क्लासेस खत्म हो चुकी थीं और ज्यादातर स्टूडेंट्स कैंटीन या पार्किंग की तरफ जा चुके थे। कॉलेज के गलियारों में अब पहले जैसा शोर नहीं था, बस इक्का दुक्का कदमों की आवाज गूंज रही थी। इसी बीच गर्ल्स वॉशरूम के अंदर हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। अदिति वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी। उसके सामने बड़ा सा मिरर था और वो मिरर में खुद को ध्यान से देख रही थी। उसके माथे की पट्टी अब हट चुकी थी, लेकिन हल्का सा निशान अभी भी दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से बैग से लिपस्टिक निकाली और अपने होठों पर लगाते हुए उन्हें ठीक करने लगी। वॉशरूम में उसके अलावा दो और लड़कियां भी थीं, जो आपस में बात करते हुए हंस रही थीं। एक लड़की ने अदिति को देखकर अपनी दोस्त के कान में धीरे से कहा, यही है ना वो? दूसरी लड़की हल्का सा मुस्कुरा दी। अदिति ने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। वो फिर से मिरर में खुद को देखने लगी। लेकिन तभी वॉशरूम का दरवाजा अचानक खुला। तीनों लड़कियों ने एक साथ उधर देखा और अगले ही पल उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। दरवाजे पर खड़ा था आर्यन। व्हाट द हेल, एक लड़की के मुंह से खुद बखुद निकल गया। गर्ल्स वॉशरूम में किसी लड़के को देखकर दोनों लड़कियां घबरा गईं, लेकिन आर्यन जैसे उन्हें देख ही नहीं रहा था। उसकी नजरें सीधे अदिति पर टिकी थीं।
अदिति भी कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। तुम? उसके मुंह से बस इतना ही निकला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, आर्यन तेजी से उसके पास आया और अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन? अदिति चौंक गई, लेकिन अगले ही पल आर्यन ने उसका हाथ खींचकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अदिति का शरीर हल्का सा उसके सीने से टकरा गया। दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी रह गई थी। वॉशरूम में खड़ी दोनों लड़कियां ये सब देखकर और ज्यादा घबरा गईं। एक ने दूसरी का हाथ पकड़ लिया, चल चल यहां से। दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकल गईं। अब वॉशरूम में सिर्फ दो लोग थे, आर्यन और अदिति। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अदिति को अचानक अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो झटके से पीछे हटने की कोशिश करने लगी। आर्यन, ये क्या कर रहे हो तुम? उसने धीरे से कहा। ये गर्ल्स वॉशरूम है। लेकिन आर्यन ने उसका हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन दर्दनाक नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब से बेचैनी थी। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। अदिति ने झुंझलाकर कहा, तो क्लास में कर लेते, कैंटीन में कर लेते, यहां क्यों आए हो? आर्यन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्योंकि वहां तुम भाग जाती। अदिति चुप हो गई। वो कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही, फिर बोली, और अब? आर्यन थोड़ा और पास झुका। अब तुम भाग नहीं सकती। अदिति के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ड्रामा बंद करो आर्यन। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन आर्यन की पकड़ अभी भी ढीली नहीं हुई। उसने सीधे कहा, तुम विक्रांत से क्या क्या सुन रही हो? अदिति का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में फिर वही गुस्सा लौट आया। ओहो, तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया, उसने ताना मारा। आर्यन ने दांत भींच लिए। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, अदिति ने व्यंग्य से हंस दिया। और मैं भी सीधा जवाब दे रही हूं, वो बोली, विक्रांत ने बस सच बताया है। आर्यन का गुस्सा अब साफ दिख रहा था। सच? अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हां, कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो कौन है? कुछ सेकंड के लिए पूरा वॉशरूम जैसे शांत हो गया। आर्यन की आंखों में गुस्से की चमक और तेज हो गई। बस यही बताया उसने, अदिति ने कहा। और क्या बताना था? फिर उसने धीरे से कहा, कि तुम उसके पीछे पागल थे और शायद अभी भी हो। तभी तो हमारी शादी के बाद भी मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। आर्यन ने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। तुम सच में इतना कम जानती हो मुझे? अदिति ने तुरंत जवाब दिया। मुझे जितना जानना था उतना अब पता चल चुका है। दोनों के बीच हवा में फिर वही टकराव भर गया। लेकिन उसी समय ऑफिस, वहीं केबिन के अंदर बैठी थी शामली। टेबल पर रंग बिरंगे कपड़ों के सैंपल फैले हुए थे। सामने स्केचबुक खुली थी और वो पेंसिल से एक नया टेक्सटाइल डिजाइन बना रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से कागज पर चल रही थीं। कभी वो रंगों को देखती, कभी पैटर्न बदलती। उसी समय उसका फोन बज उठा। उसने बिना ऊपर देखे फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। श्यामली, बेटा? श्यामली ने तुरंत पहचान लिया। मौसी, मौसी, आप? फोन के उस पार आवाज सच में बहुत परेशान लग रही थी।
बेटा, तू अभी घर आ जा। श्यामली थोड़ा चौंक गई। क्या हुआ? आरती की आवाज कांप रही थी। घर में बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। श्यामली का हाथ रुक गया। उसने पेंसिल टेबल पर रख दी। कैसी मुश्किल? लेकिन आरती जैसे ठीक से बोल ही नहीं पा रही थी। तो बस, जल्दी आ जा बेटा, अभी आ जा। श्यामली ने केबिन बाहर की तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, लेकिन मौसी, मैं अभी ऑफिस में हूँ, काम चल रहा है, मैं अभी कैसे आ सकती हूँ? फोन के उस बार कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर आरती की आवाज़ और ज्यादा घबराई हुई सुनाई दी। श्यामली, अगर तू अभी नहीं आई ना तो बहुत देर हो जाएगी। श्यामली का दिल हल्का सा धक से रह गया। उसने तुरंत कहा, मौसी, साफ साफ बताइए हुआ क्या है? लेकिन आरती कुछ पल तक चुप रहीं, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताएं। और ठीक उसी पल श्यामली के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। मौसी, बोलिए।